नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मांगना है तो अल्लाह से मांगो, और किसी से क्यों मांगे, है क्या लोगों के पास। और वो कहते हैं ना, उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, होटलों के बाहर लिखा होता है, दुनिया वाले भी यही कहते हैं, हमसे मांग के शर्मिंदा ना करो, या बंदा खुद शर्मिंदा हो जाता है या दूसरा शर्मिंदा होता है जिसके पास होता नहीं कुछ देने को। तो मांगिए तो सिर्फ अल्लाह से मांगिए, और दुआ करते हैं अल्लाह अपने सिवा किसी का मुहताज ना करना। अल्लाह ताला का लुत्फ करीब है, वो समीय व मुजीब है, हम ख़ताकार हैं, लिहाजा हमें शदीद ज़रूरत है कि इसे पुकारें, इससे दुआ करें और इसमें उकताएं नहीं। हम ये ना कहें कि कितनी ही दुआ कर ली कबूल ही नहीं होती, बल्कि इसके दर पर गिरें और या जल जलाल वल इकराम का विर्द करें। आप पूछेंगे कितनी दफ़ा, कितने दानों की तस्बीह, गुठलियों पे, खजूरों पे, किस पे, किसी पे भी नहीं, दिल की धड़कनों को तस्बीह बना लीजिए, फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर से आवाज़ क्या आती है। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला पर नज़रें लगाएंगे, अल्लाह ताला आपको उतना ही काफ़ी होगा। तो जब भी कभी विर्द की या जिक्र अस्कार की बात होती है ना, तो मुझे ऐसे खौफ आने लग जाता है कि बहुत सारे लोग क्यों अल्लाह के जिक्र के अंदर इतना मुबालगा करते हैं। जिससे मोहब्बत होती है उसको बंदा दानों पे नहीं गिनता, उसकी तो एक एक बात दिल में, दिमाग में, धड़कनों में समाई होती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इस तरीके से रस्मी तौर तरीके आ चुके हैं इबादत में भी, कि हम इसके अलावा का तसव्वुर भी नहीं कर पाते। और बाज़ दफ़ा हमें ऐसे लगता है कि जब तक कोई बड़ा ऐसा तरीका ना बना लिया जाए कि जो रिवायती अंदाज़ का हो, लोगों को जमा करना, बैठना, फिर पढ़ना, फिर सुनना, फिर बोलना, तब तक तो शायद कोई हमारी बात ही बुरी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो मांगिए तो फिर अल्लाह से मांगिए, और फिर ये कहिए, हम ख़ताकार हैं, और या जल जलाली वाली इकराम का विर्द करें, अल्लाह ताला की सिफात हुस्ना और सिफात उलिया को, यानी अल्लाह ताला की अच्छी और बुलंद सिफात को बार बार दोहराएं, हत्ता कि अल्लाह ताला हमारी फरियाद सुन ले या अपने पास से कोई बदला दे। और अल्लाह तो कहते हैं कि अपने रब को गिड़गड़ा कर और चुपके चुपके पुकारिए। एक दाई ने अपने किसी रिसाले में लिखा कि एक मुसलमान अपने बीवी बच्चों के साथ एक मुल्क में पनाह लेने के लिए गया और वहाँ की शहरियत मांगी। यानी लोग अक्सर दूसरे मुल्कों में जब जाते हैं तो वहाँ की नेशनैलिटी को पाना या उसको हासिल करना उनका एक गोल होता है, बल्कि वो सोचते हैं कि ये ना पाया तो हमारी तो कामयाबी नहीं हुई। तो खैर, इन्होंने भी कुछ अगर इसी किस्म का मामला किया तो कोई नई बात नहीं हुई, सबके साथ ऐसा होता ही अक्सर। अपने दोस्त अहबाब से मदद मांगी और पूरी कोशिश की, लेकिन इसके सारे रास्ते बंद हो गए, तदबीरें नाकाम हो गईं। इसकी मुलाकात एक मुत्तकी आलिम से हुई और इनसे सारा हाल बयान किया। उन्होंने कहा कि रात के आखिरी हिस्से में अपने आका व मौला के दरबार में खड़े हो जाओ, वही हर चीज़ को आसान करेगा। यही हदीस का मफहूम है, जब तुम मांगो तो अल्लाह से ही मांगो, मदद लो तो अल्लाह से लो, और ये जान लो कि तमाम लोग मिलकर भी तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकते, सिवाय इसके जो अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है। इस आदमी का कहना है, इसके बाद मैंने लोगों के पास और सिफारिशें करवाना छोड़ दिया। इसको हाईलाइट कीजिए, लोगों को निकालिए, क्योंकि जब तीसरा बीच में आता है ना तो ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है, गलतफहमी होती है। बंदों के साथ भी यही मामला है, अल्लाह के साथ भी यही है। कहते हैं कि मैं रोज़ रात के आखिरी हिस्से में वही अमल करता जिस आलिम ने बताया था, और सहर में दुआएं करता, यानी सहरी के वक्त। कुछ ही दिनों के बाद मैंने फिर दरख्वास्त दी और कोई सिफारिश इस्तेमाल नहीं की। कुछ दिन के बाद मैं घर में बैठा हुआ था कि तलबी आई और मुझे शहरियत यानी नेशनैलिटी मिल गई, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो अब ये कहाँ से हुई? अल्लाह ने किया। तो क्या पता चला, मांगना है तो अल्लाह से मांगो, कुछ लम्हे चूज़ कीजिए, और रात की घड़ियाँ, सहरियाँ, बड़ा प्यारा वक्त है तन्हाई। सवाल यह है कि कैसे मांगें। पहली बात, आजजी से और इनकसारी से। अपने किसी अच्छे काम का वसीला दे के भी मांग सकते हैं, रब्बाना इन्ना ना आमन्ना, ये कहकर तो सूरत आले इमरान में भी एक दुआ सिखाई गई कि अल्लाह हम ईमान ले आए, बस तू फ़क्तुबना मा शाह दीन भी आता है, और सूरत आले इमरान के आखिरी रुकू में दो तीन इसकी मिसालें हैं। फिर तीसरा तरीका ये है कि अल्लाह के नामों के ज़रिए, यानी उसके प्यारे नाम, वलिल्लाहिलस्माउलहुस्ना, उसके साथ पुकारिए। फिर गिड़गड़ा कर रात की आखिरी घड़ियों में मांगिए। कोई पर्दे नहीं होते, दूसरे सुनते भी नहीं, और दिल भी ये चाहता है ना कि हम किसी से बात करें तो कोई सुने ना। इवन किसी इंसान से भी लोग मांगते हैं ना तो फ़ौरन इधर उधर देख कर कहते हैं, अरे कोई सुन ना ले, मुझे बस आपसे बात करनी है, अकेले में वक्त चाहिए। तो जब वो मालिक कहता है कि मैं आ गया दुनिया के आसमान पे, मांगो क्या मांगते हो, तो फिर इस वक्त को गनीमत जानना है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर इसी तरह कबूलियत के साथ, यकीन के साथ मांगिए। उदुल्लाह हवान तो मूकिनूना बिल इजाबा, अल्लाह को पुकारो इस तरह से कि तुम्हें कबूलियत का यकीन हो। और इस पे कुरान पाक में बहुत सारी आयतें हैं, मसलन सूरह गाफिर 60, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं तुम मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। फिर सूरह ज़ुमर आयत 8, कि जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो बहुत रजू करता है अल्लाह की तरफ, पुकारता है, लेकिन जब नेमत मिलती है तो हट जाता है। फिर इसी तरह सूरह बकरा 186, वाइज़ा साल कई बात यन्नी फ़ैन्नी करीब, कि जब भी मेरे बारे में बंदे आपसे पूछें तो उनको मेरा पता बता दीजिए। और सूरह यूसुफ 86, इन नमाशकू बसी व हुज़नी इलल्ला, मैं अपने गम परेशानियों की फरियाद अल्लाह से ही करता हूँ। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सही मुस्लिम 6936, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमेशा बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक वो गुनाह या नाता तोड़ने की दुआ ना करे, यानी रिश्ते नाते ना तोड़े, कतर रहमी ना करे और जल्दी ना करे। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल जल्दी के क्या मानी है? आपने फरमाया, यूं कहे, मैंने दुआ की, मैं नहीं समझता कि वो कबूल हो, और फिर उसके बाद नाउम्मीद हो जाए और दुआ छोड़ दे। ये मालिक को नागवार होता है, फिर वो कबूल नहीं करता। बंदे को चाहिए कि अपने मालिक से हमेशा फजलो करम की उम्मीद रखे। अगर दुनिया में दुआ कबूल ना होगी तो आखरत में तो इसका सिला मिलेगा। आप देखिए ना, आप बच्चा माँ से मांगे और फिर के वैसे आप देंगी तो नहीं, अबू से मांगे, नहीं अबू आप बड़े कंजूस हैं आप नहीं देते, तो फिर अबू देंगे? जब इंसान इतनी गैरत रखते हैं तो अल्लाह ताला तो हर मिसाल से भी बेनियाज है। फिर आप देखिए, इसमें सहरी में रात में मांगने की बात है, तो उस नमाज को क्या कहते हैं? तहज्जुद। सवाल लिखिए, खुद से पूछिए, मुझे डिप्रेशन है जी, एंजाइटी है जी, परेशान रहती हूँ जी, स्ट्रेस में आती हूँ जी, कब आखिरी बार तहज्जुद पढ़ी थी? इसका जवाब खुद को दें। डॉक्टरों के पास जाना, इंतज़ार करना, भारी कीमत देना, साइकाट्रिस्टों को एक एक घंटा बैठकर दुख सुख सुनाना, फिर एंड पे और पैसे भी दे के आना, और इसके मुकाबिल वो जो हल भी कर सकता है, चले डॉक्टर दूसरे सुन लेंगे, दवा देंगे, सेहत तो नहीं दे सकते, शिफा तो नहीं दे सकते, दवा दे सकते हैं, शिफा नहीं दे सकते। और वो आज शाफी सुन ले तो एक मिनट में आपकी मान जाए, उसको कब पुकारा? तो आज एक टिप तो लिखे हम सब, जितने अंदेशे गम वसवसे होते हैं ना, छोटे मोटे तो होते ही हैं सबको, लिख के लिस्ट बनाएं, रात ईशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद सो जाएं, और फजर से कोई आधा पौना घंटा पहले एक अलार्म लगा लें। घर का कोई ऐसा कोना जहाँ कोई आपकी आवाज़ ना सुने, उधर छुप जाए, ताकि आपको यकीन हो ना कि ये मिला तो सिर्फ अल्लाह से मिला, क्योंकि कद समय अल्लाह कौलती तुजा दिलु कफ़ी ज़ौजीहा, अल्लाह ने खाला की सुन ली तो आपकी भी सुनेगा, मेरी भी सुनेगा। मांगिए रब से कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक रुकी हुई है, जो आप कहते हैं हो ही नहीं सकता काम, इम्पॉसिबल, और एक बात लिख लें, जिस काम को लोग इम्पॉसिबल कह देना वही होता है अल्लाह के हुक्म से। बीसियों बार की आजमाई हुई बात है, क्योंकि मैंने तो अल्लाह को हमेशा ऐसा ही पाया कि वो नामुमकिनात को मुमकिन में बदल देता है। जितना ज़्यादा आप अल्लाह पर नज़रें लगाएं, और सबसे ज्यादा अल्लाह पे नजरें लगाएं, फिर आप देखेंगे आपको मुझे हमेशा इस चीज की फिक्र करनी चाहिए। आप देखिए दुनिया दुखी है, क्यों पर क्यों परेशान है दुनिया? आप लोगों को तसल्ली क्यों नहीं देते? आप लोगों को उम्मीद क्यों नहीं देते? आप लोगों का दिल क्यों नहीं जोड़ते? अल्लाह ने आपको अपने कुर्ब के रास्ते दिए हैं, आप एक दफ़ा तो ज़रा लोगों को बुलाइए उस रब की तरफ, जोड़िए उस मालिक से, फिर देखिए होता क्या है। असल बात यह कि हमें खुद भी यकीन नहीं होता। हम अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात इतने उलझे होते हैं, अल्लाह से मांगना भी भूल जाते हैं। हम कहते हैं नहीं मेरी कहाँ सुनेगा, अब अल्लाह किस किस की सुने। और बाज़ लोग कुछ तसव्वुर भी ऐसे ही देते हैं, अल्लाह बहुत मसरूफ़ है, बात करो जल्दी बात करो। नाउज़ु बिल्ला सुम्मा नाउज़ु बिल्ला। हमेशा अपने आप को कहिए मैं तो सिर्फ रब से मांगूंगी, और वलम अकुम भी दुआ का रब्बी शकीजा। अल्लाह से मांगने वाले महरूम रह सकते नहीं हैं, ये उसकी शान है, ये उसका कमाल है, ये उसकी रबूबियत है। और साथ ही आप देखिए कि अगर तहज्जुद के फजाइल भी देखते जाएं तो महबूब तरीन अमल है, दुआ की कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का वसीला, फितनों से बचने का ज़रिया है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेहतरीन वक्त है, और जन्नत में ले जाने वाला है अमल, यानी ये सबब बनेगा जन्नत में ले जाने का इंशाअल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा परवरदिगार बुलंद बाबरकत है, हर रात को इस वक्त आसमाने दुनिया पर आता है, जब आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है वो कहता है कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं इसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं इसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं इसको बख्श दूं। और हम सो रहे होते हैं, क्या जवाब आता होगा हमारी तरफ से? खराटे या करवटे? तो अल्लाह ताला से मांगिए, और जितना ज़्यादा मांगेंगे अल्लाह उतना देगा। बस यही बात है कि हम अपनी ज़िंदगी के इन लम्हों में अगर अपने मालिक को पा लें और उसके साथ फिर हमारा ताल्लुक हमेशा का जुड़ जाए, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला की रहमत भी आती है। और यही बात है कि हम जितना ज़्यादा अल्लाह को पुकारते हैं अल्लाह ताला ही फिर हमारी मदद भी करते हैं। तो बात यह है कि अमनो सुकून से फ़िज़ा में परवाज़ करेंगे, गिरेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला मुहाफिज़ है, ये महज़ अल्लाह सुबहाना ताला का लुत्फ़ व एहसान है। तो हमने इसमें क्या सीखा, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि मुसीबत में कौन काम आता है? सिर्फ अल्लाह ताला, उसी के हाथ में सब कुछ है। और इसकी कुछ कुरान पाक की आयतों की दलील भी देख लीजिए, मसलन सूरत आले इमरान अल्लाह ताला आयत 150 में क्या कहते हैं, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वही बेहतरीन मददगार है, बलिल्लाहु मौलाकुम। हाँ, और सूरत हज 78, अल्लाह को मजबूत थामो, वा तसिमु बिल्लाही हुवा मौलाकुम, वही तुम्हारा मौला है। फिर सूरत अनकबूत आय 22 में है, और न तुम किसी तरह ज़मीन में आजिज़ करने वाले हो और न आसमान में, और न अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार है और ना कोई दोस्त है। फिर इसके बाद देखिए कि सिलसिला सहीहा की रिवायत है 956, अल्लाह के नबी ने फरमाया बेशक इंसान पर डाले गए बोझ और कुलफत के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए मददगार आता है, और इसी तरह इस पर डाली गई आजमाइश के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से इसे सब्र की तौफीक मिलती है। अबू हुरैरा की रिवायत है हज़रत अनस बिन मालिक से, कितनी बड़ी बात है, आपने अगर इस पर गौर किया नहीं तो बाद में कीजिएगा, अल्लाह बंदे पर जितनी तकलीफ़ डालता है ना फिर उतनी उसके लिए मदद भी आती है। दुआ कीजिए अल्लाह हम पे उतनी डाले जो हम बर्दाश्त कर सकें। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अगला टॉपिक देखते हैं, और वो क्या है, मुसीबत में कौन हमारे काम आता है। इसमें से थोड़ा सा पढ़ के फिर आगे चलेंगे, ये सब वाक़यात हैं असल में, अब इधर जिस हिस्से पे हम आगे ये मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं। जरीदतुल कसीम मुल्क का एक पुराना अखबार है, इसमें आया कि दमिश्क के एक नौजवान ने सफ़र के लिए टिकट रिजर्व कराया, अपनी वालदा को बताया कि हवाई जहाज़ इतने बजे परवाज़ करेगा इसलिए इस टाइम पर इसे उठा दें, फिर वो सो गया। माँ ने ज़राए अब्लाग में मौसम के अहवाल सुने कि हवाएं शदीद हैं और बादल घिरे हुए हैं, रेतली आंधियां चल रही हैं, अपने इस अकलौते बेटे पर तरस आया इसलिए इसने वक्त पर उसको उठाया नहीं। जब ये यकीन हो गया कि जहाज़ परवाज कर चुका होगा तब बेटे को जगाने आई, लेकिन इसे बिस्तर पर मुर्दा पाया। किस कदर मुश्किल है जीना, किस कदर आसान है मौत, कह दो जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो तुम्हें लाहक होकर रहेगी। फिर तुम हाजिर हो गायब को जानने वाले के पास लौटाए जाओगे, बस वो तुमको खबर करेगा तुम्हारे आमाल की। सच है कि मौत से भागा और मौत में गिरा, ऐसे ही है ना, जितना मौत से भागेंगे बिलाहर ज़मीन की गोद में मौत की सूरत में चले जाएंगे। कहावत है कि जो बचने वाला होता है इसे समंदर में भी रास्ता मिल जाता है, जैसे मूसा और उनकी कौम को मिल गया। और जब कज़ा आ जाए तो कोई भी चीज़ मौत का सबब बन सकती है, तो फिर सिर्फ़ एक बीमारी, एक जरासीम को ही हम मौत की वजह नहीं कह सकते। हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेकिन मौत से बचेंगे कब, जब अल्लाह का हुक्म होगा। तो ये जो सारी बातें हमने सीखी कि मुसीबत में कौन काम आता है, तो ये अल्लाह ही काम आता है, उसी को पुकारना है, उसी से ही बात करनी है। और आप याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला को पुकारेंगे, अल्लाह ताला पे नज़रें रखेंगे, अल्लाह ताला आपका गुमान कभी ज़ाया नहीं करेगा। और अगला टॉपिक भी इसी से मुतल्लिक है, मौत का एक किस्सा। मौत के किस्से बहुत हैं। शेख अली तंतावी ने अपने सिमात व मुशाहदात, सिमात कहते हैं जो बातें सुनी हुई हैं, और मुशाहदात जो कि देखी हुई हैं, देखी सुनी बातें कह लीजिए, कही सुनी बातें या कुछ ऐसे ही। उसमें लिखते हैं कि शाम के एक आदमी के पास एक बड़ी गाड़ी थी। इसके साथ एक आदमी गाड़ी में सवार हुआ। इसके ऊपरी हिस्से में एम्बुलेंस थी जिसमें ज़रूरत के लिए एक बाथबान भी था। बाथबान आप समझते हैं ना, कश्तियों के ऊपर जो लगाते हैं एक फैदर सा। बारिश हो गई, पानी बहा, ये सवार खड़ा हुआ और एम्बुलेंस में दाखिल हो गया और अपने आप को बादबान से ढक लिया। इतने में एक और सवार हुआ जो एम्बुलेंस की जानिब चला गया। इसे मालूम न था पहले से भी कोई आदमी मौजूद है। बारिश पड़ती रही। अचानक पहले वाले ने ये देखने के लिए कि बारिश थमी या नहीं अपना हाथ बाहर निकाला। दूसरा बेचारा इसके चमकते हाथ को देखकर समझा कि मुर्दा जिंदा हो गया। इस पर घबराहट और खौफ तारी हो गया, अपने आप को भूल गया और शदीद घबराहट में गाड़ी से नीचे गिर पड़ा जो इसके भेजे को पाश पाश कर गई। इस बेचारे की मौत इस तरीके पर लिखी थी, वो आकर रही। बंदे को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मौत इसके ताकुब में है, वो सुबह शाम मौत की तरफ गामजन है। कितनी शानदार बात है जो हज़रत अली ने फरमाई कि आखरत सामने आने के लिए चल पड़ी है और दुनिया पीछे की तरफ वापस चल रही है। इसलिए आखरत के बनो, दुनिया के ना बनो। आज अमल है और हिसाब नहीं, कल सिर्फ हिसाब होगा अमल नहीं। इससे हमें पता चलता है कि इंसान को तैयार होना चाहिए, वो इस्लाह हाल करे, तजदीदे तौबा करे और ये जान ले कि इसका मामला रब्बे करीम के साथ होगा जो कवी और अजीम भी है और करीम भी। मौत किसी से इजाज़त नहीं लेगी, ना किसी की तरफदारी करेगी, ना ही वो पहले से लोगों को आने की इत्तला देगी, क्योंकि कोई नफ्स नहीं जानता कि कल क्या करेगा और ना ये कि किसी जगह यानी कहाँ उसको मौत आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आप देखिए कि मौत के ये किस्से पढ़ने के बाद क्या बात समझ आती है। पहली बात है कि मौत ताकुब में है, वो बड़ी मारूफ पोएम है ना, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। अपने बारे में सोचें तो कैसा लगता है, कईयों को तो अपने हाथों से दफनाया लोगों ने। जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो हमें ये नामुमकिन लगता है, और एक दिन ये बात हकीकत हो जाएगी। कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, हर घड़ी मौत के लिए तैयार है। हम तो कोई दूसरी ही तैयारियों में होते हैं और इतने में मौत का वक्त आता है, और मौत सबसे बड़ी हकीकत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा 78 में, फ़ाइनमा तकूनु युद्रिककुमुल मौत वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, गो तुम मज़बूत किलों में हो। और सूरह अनकबूत 57, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत को चखने वाला है। कभी इस आयत की तफसीर सुनेंगे तो आपको बताऊंगी कि यहाँ मौत के साथ जायका और चखने वाली क्यों आया, यानी बड़ी यूनिक आयत है ये। ये नहीं कहा हर एक मरने वाला, चखने की बात है इधर, क्योंकि आप मौत को नहीं रोक सकते लेकिन आप मौत के जायके को बदल सकते हैं। और एक बड़ा मीठा जायका है मौत का, स्वीट हसीन, और एक बड़ा तलख और कड़वा है, अल्लाह बचा के रखे। अब इसको सुनकर जानकर करें क्या, खुद को हमा वक्त मौत के मुंह में समझिए। आज जो दुनिया में सांस आ रहा है ना, इसको गनीमत जाने, इसी तरह अपने अमाल का जायज़ा लें और इनको अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक ढाल लें और अल्लाह इसको आसान कर दे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अल्लाह के नबी की आखिरी बीमारी का जो किस्सा बयान करती हैं सिलसिले सहीहा में 3875 पे जाके पढ़िए। जब आप सेहतमंद थे तो आप कहा करते थे कि किसी नबी को मौत नहीं आती जब तक इसे इसका जन्नती ठिकाना ना दिखाया जाए, और फिर मौत व हयात में इख्तियार ना दिया जाए, यानी जीना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। और जब आप ख़ुद बीमार हुए और आपका सर हज़रत आयशा की रान पर था तो अल्लाह के नबी पर गशी तारी हो गई, फिर इफाक़ा हुआ, फिर आपने छत की तरफ टुकटुकी बांध कर देखना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि अल्लाह मुझे रफ़ीक आला तक पहुँचा दे। इस वक्त कहती हैं कि मैंने कहा, मतलब ये हुआ कि आपने मौत व हयात के इख्तियार में हमें तरजीह नहीं दी, यानी कि आप जीना नहीं चाहते। अब मैंने पहचान लिया कि अब आप इसी हदीस का मिसदाक बन रहे हैं जो हमें तंदरुस्ती की हालत में बयान करते थे, यही कि आपको चॉइस दी जाती है। और आपका आखिरी कलमा ये था, ए अल्लाह रफ़ीक आला तक पहुँचा दे। ज़रा सा सोचिए। अगला टॉपिक है, मौत में ना ताखीर हो सकती है ना तकदीम, यानी ना वक्त से पहले आ सकती है और ना लेट होगी। तनतावी बहुत ही अच्छे मुफस्सिर हैं, कहते हैं, यानी राइटर हैं बेसिकली, इन्होंने अपने समात व मुशाहदात में ज़िक्र किया कि एक बस जो सवारियों से भरी हुई थी, ड्राइवर दाएं बाएं देखता जा रहा था, अचानक रुक गया। सवारियों के सबब पूछने पर बोला, एक बूढ़ा आदमी सवार होना चाहता है, इसने हाथ देकर रुकवाया है। लोगों ने कहा, हमें तो कोई नज़र नहीं आता। कहा, नहीं। कहने लगे, कोई भी तो नहीं। कहा, देखो वो बैठने के लिए आया। वो सब फिर बोले, हमें तो कोई भी नज़र नहीं आता। अचानक वो ड्राइवर सीट पर बैठे बैठे मर गया, यानी वो उसकी मौत का फरिश्ता था। दूसरों को कैसे दिखता, वो तो उसी को दिखता है जिसको लेने आते हैं। बस जब इनकी मौत आ जाएगी तो ना इसमें एक साथ की तकदीम होगी ना ताखिर, ला यस्तकदीमून वला यस्ताखिरून। इंसान खतरात से घबराता और मौत से भागता है, लेकिन मौत है कि ऐन मामन के अंदर आकर दबोच लेती। मामन कहते हैं अमन की जगह को, यानी आप बड़ी पुरसकून जगह में बैठे होते हैं, मौत का फरिश्ता वहाँ भी आ जाता है। वो लोग जो पीछे बैठे रहे अपने भाइयों के बारे में बोले कि उन्होंने हमारा कहा किया होता तो कत्ल ना होते, यानी अगर आज वो ना निकलते जंगों में तो बच जाते, या ना जाते जंगों में तो बहुत ही महफूज हो जाते। कह तो तुम अपने आप को मौत से दूर कर लो अगर तुम सच्चे हो। अजीब बात ये भी है कि जब हम खतरों से दो चार होते हैं तभी हमें अल्लाह से मुलाकात, दुनिया की हिकारत और इसे छोड़ कर जाने की बात याद आती है। आगे पीछे तो हम क्या कहते हैं, वक्त ही नहीं है, मसरूफ़ बहुत है। आप देखिए, जिसने ज़िंदगी दी उसी के लिए वक्त नहीं बचता, नमाज़ें भी हमारी लेट स्लेट ही होती हैं। तो क्या पता चला कि मौत की हकीकत अल्लाह ताला की निगाह में क्या है। सूरह यूनुस 49 के मुताबिक इसका वक्त मुकर्रर है, जब आ जाती है तो एक घड़ी भी देर नहीं होती और ना जल्दी होती है। इसी तरह सूरत वाकया 60 में है, उससे क्या पता चलता है कि हमने ही तुम्हारे दरमियान मौत का वक्त मुकर्रर किया है और हम हरगिज़ आजिज़ नहीं हैं, यानी मौत का वक्त मुकर्रर है। और इसी तरह सूरह अहज़ाब 16, कह दीजिए कि तुम मौत से या खौफ कत्ल से भागो तो ये भागना तुम्हारे कुछ काम ना आएगा और इस वक्त तुम बहुत ही कम फ़ायदा उठाओगे। इंसान इंश्योरेंस कराता है, इंसान कीमती चीज़ें खाता है, हेल्दी चीज़ें, डाइट्स प्लान, सब कुछ, लेकिन हकीकत क्या है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। चलिए काम कीजिए, है तो मुश्किल, करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। अपने ही पर्सनल चीज़ों को देखिएगा आज इस नज़र से जैसे आखिरी निगाह डाली जाती है। फिर पूछिएगा, कब कब के सामान जमा करके रखे हैं? कफन भी है इसमें कि नहीं? अल्लाह ताला हमें जीने के साथ जाने की तैयारी करने वाला बना दे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, जिन्हें तुम पुकारते हो वो गुम हो गए सिवाय अल्लाह के। बात तो सच है। 1413 हिजरी में ये कहते हैं कि मैंने रियाज से दम्माम शहर का सफ़र किया और तकरीबन दोपहर 2 बजे वहाँ पहुँचा। हवाई अड्डे पर अपने एक दोस्त का इंतज़ार किया जो ड्यूटी पर था और देर से निकलता था। करीब के एक होटल के लिए मैंने गाड़ी किराए पर ली। होटल में दाखिल होकर मैंने देखा वहाँ ज़्यादा लोग ना थे, छुट्टी और विज़िट के दिन भी ना थे। कारकुनों और मुलाजमों से हटकर मैंने चौथी मंजिल पर एक कमरा लिया। मेरे साथ कोई ना था। कमरे में दाखिल होकर मैंने बैग बिस्तर पर रख दिया और वुज़ू के लिए आया। बाथरूम को बंद करके मैंने वुज़ू किया और फिर दरवाज़ा खोलने के लिए आया तो बंद मिला। मैंने हर तरह से इसे खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुला। अब मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था, ना कोई खिड़की, ना फ़ोन जिससे रब्ता करूँ, ना पास में कोई आदमी जिसे आवाज़ दूँ। अब मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद आई। मैं इस जगह पौन घंटा रहा जो मुझ पर पूरे 3 दिन की तरह गुजरे। पसीना फूट पड़ा, दिल थर्रा कर रह गया क्योंकि मैं नई जगह पर था। दूसरे जो मामला पेश आया वो बिल्कुल अचानक था। फिर मैं किसी से रब्ता नहीं कर सकता था। सिर्फ पौन घंटे में कितनी ही इबरतें, हादसात और यादें दिमाग में घूम गई। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। वो कहते हैं ना कि पाँव मन मन भर के हो जाए। शायर कहते हैं, कभी पूरी उम्र तंग हो जाती है और एक घड़ी की राहत मिलती है और पूरी ज़मीन पर एक ही जगह पाँव धरने को मिलती है। जी, आखिर मैंने दरवाज़े को धक्का देने के बारे में सोचा। चुनाचे कमज़ोर और नहीफ जिस्म से मैंने धक्का देना शुरू किया। मुझे लगा कि घड़ी के डायल जितना लोहे का टुकड़ा आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहा। मैं इसमें लगा रहा, जब थक जाता रुक जाता, फिर शुरू कर देता, फिर थक जाता तो रुक जाता, फिर शुरू कर देता। आखिर में दरवाज़ा खुल गया। मुझे लगा कि मैं कब्र से निकल आया हूँ। अपने कमरे में आकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे अल्लाह की कुदरत के साथ इंसान की कमज़ोरी, बेतदबीरी और मौत के पीछे लगे होने का एहसास हुआ। साथ ही अपने नफ्स और उम्र में जो गलतियाँ और आखरत फरामोशी थी वो भी याद आई। तभी तो अल्लाह कहते हैं, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। उस दिन से डर जाओ जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। तुम जहाँ भी होगे मौत तुम्हें आएगी, अगरचे तुम मज़बूत कलों में क्यों ना हो। इस बारे में बहुत से अजायबो गरायब मैंने भी पढ़े और सुने। ऐसा होता है कि आदमी मौत की तरफ जाता है, ज़िंदगी मिल जाती है। कोई ज़िंदगी की तरफ जाता है तो मौत मिल जाती है। कोई इलाज कराता है तो हलाक हो जाता है। कोई अपने आप को फिदा कर देता है और मौत को गले लगा लेता है तो वो निजात पा जाता है। बस सारी अज़मत और हम्द अल्लाह सुबहाना ताला के लिए है। इन वाक़यात को सुनते पढ़ते वक्त आप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई आपको इस बात का यकीन आ रहा है कि जिन्हें तुम पुकारते हो वो गुम हो गए सिवाय अल्लाह के? ये सिर्फ उधर समंदरों में मक्का वालों के साथ नहीं होता था। आपकी मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात आते हैं जब अल्लाह हमें इस बात का यकीन दिलाते हैं, अब बुलाओ, आप देखो, आप सोचो ज़रा। हम सारी ज़िंदगी लोगों को सहारा बनाते हैं, ये ना हुआ तो क्या होगा, ये घर ना होंगे तो मेरा क्या होगा, फलां बच्चा, फलां बड़ा। सब झूठे सहारे, सब झूठे सहारे। एक सहारा सच्चा और वो अल्लाह का है। बस उसको पकड़ी, उस पे नज़रें लगाइए।